ये आकाशवाणी दिल्ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न श्रेणियों में 78 स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए। नई दिल्ली नगर पालिका को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के लिए सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सुपर स्वच्छ लीग सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, इस वर्ष के अंत तक देश की लॉजिस्टिक लागत घटकर 9% हो जाएगी। दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र में बिजली कंपनी के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज दिल्ली के यूईआर चौराहों पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर और अंडरपास का निरीक्षण किया। और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में खेलो भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के 9वें संस्करण के पुरस्कार आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि इस बात पर प्रकाश डाला कि स्वच्छता विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने देशवासियों से देश को स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित बनाने के लिए आगे आने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने कहा कि 2025 में देश स्वच्छता और आस्था का अद्भुत संगम देखेगा।
मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि वर्ष 2024 के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण का आयोजन किया गया है। इस सर्वेक्षण में विभिन्न हितधारकों, राज्य सरकारों, शहरी निकायों तथा लगभग 14 करोड़ देशवासियों की भागीदारी सुनिश्चित की है। निष्पक्ष सर्वेक्षण द्वारा आकलन के आधार पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले सभी निकायों का पुरस्कार हेतु चयन किया गया है।
राष्ट्रपति ने कहा कि अक्सर हम जिन चीजों को अपशिष्ट समझते हैं वो मूल्यवान होती हैं।
वेस्ट इज वेल्थ, जिस चीज को सामान्यतया वेस्ट समझा जाता है वो वास्तव में मूल्यवान होते हैं। उस मूल्यों को जिन तरीके से उजागर किया जा सकता है उन पर अधिक से अधिक बोल देना चाहिए। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि लाखों महिला उद्यमी और अनेक महिला स्वयं सहायता समूह वेस्ट टू वेल्थ में जुड़े हैं तथा कुछ बहुत अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए।
इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न श्रेणियों में कुल 78 पुरस्कार प्रदान किए गए। इस वर्ष ये पुरस्कार 4 श्रेणियों में प्रदान किए गए, जिनमें सुपर स्वच्छ लीग शहर और 5 विभिन्न जनसंख्या श्रेणियों में शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ शहर शामिल हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सुपर स्वच्छ लीग सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। NDMC को ये सम्मान आज राजधानी के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने दिया। NDMC की ओर से ये पुरस्कार दिल्ली सरकार में शहरी विकास मंत्री आशीष सूद, NDMC अध्यक्ष केशव चंद्रा और NDMC उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने संयुक्त रूप से ग्रहण किया। NDMC को सुपर स्वच्छ लीग शहर घोषित किया गया है, जो 50,000 से 3,00,000 की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में विश्व स्तरीय स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और हरित पहल प्रदान करने में इसके नवाचार और नेतृत्व को मान्यता देता है। NDMC अध्यक्ष केशव चंद्रा ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये पुरस्कार स्वच्छता, सेवा मानकों और नागरिक उत्कृष्टता में मानक स्थापित करने के NDMC के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि वे अपने कर्मचारियों, विशेषकर सफाई सेवकों को बधाई देते हैं, जिनकी अथक मेहनत से हमें ये राष्ट्रीय सम्मान मिला है। वहीं कुलजीत सिंह चहल ने नई दिल्ली को सबसे स्वच्छ राजधानी बनाने में सहयोग के लिए निवासियों और आगंतुकों का धन्यवाद व्यक्त किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इस साल के अंत तक देश की लॉजिस्टिक्स लागत घटकर 9% रह जाएगी। आज नई दिल्ली में एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि लॉजिस्टिक्स लागत में कमी से भारत का निर्यात 1.5 गुना बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्यात में वृद्धि से रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे और हम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
अब परली से इथेनॉल बन रहा है, परली से CNG बन रहा है, परली से एविएशन फ्यूल बन रही है, तो धीरे धीरे हमारे देश को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त करना, फॉसिल फ्यूल के प्रदूषण से मुक्त करना, ट्रैफिक जाम से मुक्त करना और उसके साथ साथ इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। तो इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके इकोनॉमी को भी मजबूत करना, ये हमारा मिशन है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज घूंडा विधानसभा क्षेत्र में चौपाल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली का कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा, हर मांग पूरी होगी। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि सांसद और विधायकों द्वारा सुझाए गए सभी कार्य प्राथमिकता से पूरे किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये चौपाल न केवल आम नागरिकों से संवाद का माध्यम बनेगी, बल्कि ये शासन और जनता के बीच की दूरी को कम करने की दिशा में एक सशक्त प्रयास है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सिग्नेचर ब्रिज के निकट प्रस्तावित स्काई यू टर्न निर्माण स्थल का भी निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने यमुना विहार रोड और आसपास के क्षेत्रों में जारी विकास कार्यों का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर और गुणवत्ता के मानकों के अनुसार पूर्ण किया जाए। इस कार्यक्रम में सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा, विधायक अजय महावर सहित बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज गोकुलपुरी स्थित कांवड़ शिविर का उद्घाटन किया और दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कांवड़ शिविर की व्यवस्थाएं अधिकारियों, मंत्रियों और विधायकों द्वारा समय से पहले ही सुनिश्चित कर ली गई हैं। दिल्ली सरकार पूरी तत्परता और पारदर्शिता के साथ अपना कर्तव्य निभा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार 374 कांवड़ शिविर लगाए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र में बिजली कटौती की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए बिजली कंपनी के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान क्षेत्र में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। बैठक में श्री मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में बिजली कटौती किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि गर्मी में बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए करावल नगर और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर्स लगाए जाएं और पुराने ट्रांसफार्मर्स की क्षमता बढ़ाई जाए, जिससे बिजली आपूर्ति में कोई व्यवधान न हो। श्री मिश्रा ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्रों में बिजली मीटर से जुड़ी समस्याओं का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश सीमा विवाद में आ रही मीटर की समस्याओं का भी निराकरण किया जाए। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज दिल्ली के यूईआर चौराहों पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर और अंडरपास का निरीक्षण किया। दिल्ली में लंबे समय से जामग्रस्त इलाकों को जाम मुक्त करने की दिशा में यूईआर परियोजना एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना से पश्चिमी और बाहरी दिल्ली के उन लाखों लोगों को राहत मिलेगी जो रोजाना इस जंक्शन पर लगने वाले भीषण जाम से जूझते हैं। निरीक्षण के बाद लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य का दोबारा अध्ययन किया जाएगा और जो भी कमियां मिलेंगी उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जनता को दीर्घकालिक समाधान की दिशा में काम कर रही है।
अभी जो यहाँ पे काम चल रहा है फ्लाईओवर का, टनल का, तो उसके बाद में काफी यहाँ पे जाम आने लग गया है, तो कहाँ पर चूक हुई है उसको देखने आए थे। अभी पूरा सारे कंसल्टेंट के साथ मिलकर एक बार दोबारा स्टडी करेंगे और अभी भी इसमें क्या गुंजाइश हो सकती है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे।
दिल्ली विधानसभा सोमवार से विधायकों के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेगी। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में विधायकों के ई विधान एप्लीकेशन से संबंधित जानकारी दी जाएगी।
आज विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा परिसर में लोक निर्माण विभाग द्वारा विकसित किए जा रहे विशेष प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। विधानसभा कार्यालय ने बताया है कि नए प्रशिक्षण केंद्र में लगभग 20 कंप्यूटर लगाए जाएंगे। साथ ही श्री गुप्ता ने बताया कि नेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य विधायकों को आगामी मानसून सत्र के लिए ई विधान डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपकरणों और कार्यप्रणालियों से परिचित करना है। रहीसुद्दीन रिहान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया।
दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी सरकार के शासनकाल में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में कथित घोटाले की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से जांच कराए जाने के आदेश दिए हैं। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आप पर इस योजना के तहत कोविड-19 के दौरान 145 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया है।
पिछली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना नाम से एक योजना चलाई। प्रतिभाओं का तो जो विकास हुआ होगा वो आप सबके लिए भी शोध का विषय है, मगर विकास आम आदमी पार्टी के मंत्रियों और नेताओं का हुआ। बाबा साहब के नाम पर चलने वाली योजना में भी ऐसा भ्रष्टाचार कि स्वयं बाबा साहब की आत्मा कराहती होगी।
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपने कार्यकाल में नियमों के विरुद्ध जाकर महंगे मोबाइल फोन खरीदे थे। श्री सूद ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान मोबाइल खरीदने से संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक करते हुए यह आरोप लगाए। श्री सूद ने कहा कि नियमों के अनुसार वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री के लिए 50,000 रुपए और मंत्रियों के लिए 45,000 रुपए तक की कीमत के मोबाइल खरीदना निर्धारित था, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने नियमों की अवहेलना कर मोबाइल खरीदे थे और उनके भुगतान के लिए सरकार पर दबाव भी डाला था।
1,80,000 रुपए के इतने महंगे महंगे मोबाइल लिए। मोबाइल हमारी जरूरत है और हमारी सरकार में एक मंत्री ने अपनी लिमिट के अलावा किसी ने मोबाइल का पैसा क्लेम नहीं किया। हर साल 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, हर साल सरकार के खर्चे से एक नया मोबाइल।
दिल्ली नगर निगम ने निगम की 12 विशेष, 11 तदर्थ समितियों और शिक्षा समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। सभी समितियों के लिए नामांकन प्राप्त करने का आज अंतिम दिन था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने यात्रियों के सफर को और बेहतर बनाने के लिए नमो भारत की आनंद विहार और बेगमपुल स्टेशनों पर कला के माध्यम से समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने का निर्णय लिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में खेलो भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने खेलों को एक जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जनता खेल महासंघ हो, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार सहित सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों से भारत इसे प्राप्त कर सकता है।
स्पोर्ट्स एक पब्लिक मूवमेंट है और एक पब्लिक मूवमेंट के रूप में हम उसको कैसे चलाएं और यही स्पिरिट और यही मूवमेंट को हमें आगे बढ़ानी है तो सभी स्टेक होल्डर एक साथ में मिलकर प्रयास करें तो हम अवश्य गोल भी तय कर सकते हैं और गोल अचीव भी कर सकते हैं।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर दिल्ली और गोरखपुर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से प्रतिबंधित दवा ट्रामाडोल के 2,160 कैप्सूल जब्त किए गए हैं। 12 अक्टूबर से शुरू होने वाले वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के 20वें सत्र के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। ये 19 सितंबर तक चलेगा। मैराथन की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से होगी। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न श्रेणियों में 78 स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए। नई दिल्ली नगर पालिका को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के लिए सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सुपर स्वच्छ लीग सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक की देश की लॉजिस्टिक्स लागत घटकर 9% हो जाएगी। दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र में बिजली कंपनी के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने आज दिल्ली के UER चौराहों पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर और अंडरपास का निरीक्षण किया। और केंद्रीय युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में खेलो भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।